नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आज आपके साथ मैं हूं रवि कपूर। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग साहब। कुलविंदर साहब, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद रवि और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
तो आइए कार्यक्रम की शुरूआत करते हैं मुख्य खेल समाचारों से। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। भारत और बांग्लादेश के बीच महिला क्रिकेट 2020 श्रृंखला का पांचवां और अंतिम मैच भारत ने 21 रन से जीता। मनिका बत्रा सऊदी स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में हारी और भारत ने आज इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से धर्मशाला में हो रहा है। पंजाब की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 3 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। इस बीच अभी समाचार यह भी मिल रहा है कि वहां बारिश की वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रुक गया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले कल सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स को 10 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 9 ओवर और 4 गेंदों में बिना कोई विकेट खोए 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कुलविंदर जी, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला, क्या लगता है आपको कौन सी टीम आज किस पर भारी पड़ने वाली है?
देखिए, पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अपने घर पर खेल रहा है पंजाब और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही टीमों के 8-8 अंक हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 7वें स्थान पर है, पंजाब 8वें स्थान पर है, लेकिन नेट रन रेट पे वो थोड़ा ऊपर है
जी।
अब सबसे बड़ी बात यह कि आखिर की जो 4 टीमें हैं आरसीबी, पंजाब, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, ये चारों के 8-8 अंक हैं और मुंबई इंडियंस के 12 मैचों में 8, इसलिए वो तो आउट हो चुका है
जी।
अब रह गई बात तीन लोगों की, आइए आगे बढ़ पाएंगे आरसीबी, पंजाब और गुजरात, तो मुझे संभावनाएं कम लगती है। लेकिन इतना और बता दूं, एक बार ऐसा भी हुआ था 2-3 साल पहले कि मुंबई की टीम सारे मैच शुरुआत के आधे मैच हारी, उसके बाद आधे जीतकर क्वालिफाई कर गई
जी, जी।
और पिछले 3 सीजन से जो 14 अंक ले रहे हैं वो भी क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो बड़ा रोचक बना हुआ है। और कल के मैच ने और जो हुआ था उसने और थोड़ा सा दिशा बदल
जी, उससे भी उस पर भी आएंगे। ये बताइए, अब जैसे बारिश हो गई है वहां पर, तो इसको लेकर क्या स्थिति रहेगी?
बारिश की वजह से थोड़ा सा विकेट गीला हो जाएगा तो और दिक्कत आएगी, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। और लगातार पिछले 3 जीत के साथ आरसीबी धर्मशाला पहुंचा है, उसने एसआरएच को हराया, गुजरात को 2 बार हराया। पंजाब अपना पिछला मुकाबला हार के आई, सीएसके से 28 रन से धर्मशाला में ही हारी, तो पंजाब चाहेगा कि जो इस मैदान पर पिछली हार हुई उससे अब बचे और 2 अंक हासिल करे। जो भी टीम यहां पर आज मुकाबला जीतेगी वो आगे बढ़ जाएगी और दूसरे की संभावना खत्म हो जाएंगी। आरसीबी का पलड़ा मुझे थोड़ा भारी इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पंजाब की जितनी भी अभी तक फील्डिंग देखने को मिली है 5-6 कैच ड्रॉप हुए हैं
जी।
बहुत अच्छा उन्होंने मूव किया पंजाब की तरफ से, कावे रापा जो दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने 2 विकेट भी लिए, उन्होंने फाफडू फ्लेसी को भी आउट किया और इसके अलावा विल जैक्स को उन्होंने आउट किया। और लेकिन कोहली साहब अभी भी लगे हैं, 584 रन टोटल हो गए उनके, 600 पार कर जाएंगे उम्मीद है। लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा खलल पड़ जाता है, लेकिन बारिश थोड़ी देर के लिए आती है। मैंने यहां से मैच किए हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन आरसीबी की टीम कोहली है, पाटीदार है, इसके अलावा मैक्सवेल है, विल जैक्स आउट हो गए, फाफडू भी हो गए, ग्रीन है, तो थोड़ा पलड़ा भारी रहे।
और कल एक बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स के बीच
जी,
तो
देखिए उसका तो अब कोई बात ही मत कीजिए, इतने तैश में बल्लेबाजी करी। ये वही ट्रेविस हेड हैं जिन्होंने कल ये पावर प्ले में 4था अर्धशतक बनाया है, 30 गेंदों पर 89 रन। आपको बताऊं सुनने वालों को, ये वही ट्रेविस हेड हैं जिसने 2023 के विश्व कप के फाइनल में भारत के खिलाफ 120 गेंदों पर 137 रन बनाए थे। हालांकि 47 रन पर 3 विकेट जा चुके थे जिसमें वार्नर, मिचेल और स्मिथ, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लबुशेन के मिलके साथ 192 रन बनाए 4थे विकेट के लिए, भारत के हाथों से ट्रॉफी छीन ली थी, तो जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 62 गेंदें कम थी और बच गई, उसके बाद उन्होंने पूरी लखनऊ की टीम को उन्होंने मायूस बना दिया था, जो चेहरा देखने वाला था कप्तान लोकेश राहुल का, गेंदबाज बचना चाह रहे थे उसके सामने गेंदबाजी करने के लिए
जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लगातार तीसरी बार आईपीएल के एक सीजन में 1000 से अधिक छक्के लगे हैं। 2022 में दो नई टीमों के आने से मैचों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और इसका सीधा असर छक्कों की संख्या पर भी पड़ा। उस सीजन में 74 मैचों में कुल 1062 छक्के लगे थे। इससे पहले सर्वाधिक 872 छक्के आईपीएल 2018 में लगे थे। एक रिपोर्ट।
आईपीएल 2023 में 1000 छक्कों की संख्या 67वें मैच में पूरी हुई थी, जबकि इस बार 10 मैच कम और 2312 गेंद पहले ही पूरी हो गई हैं। एक मैच में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड आईपीएल के मौजूदा सीजन से पहले किसी टी20 मैच में सर्वाधिक 37 छक्कों का ये रिकॉर्ड 2018 के अफगानिस्तान प्रीमियर लीग और 2019 के कैरेबियन प्रीमियर लीग में बना था। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच 27 मार्च को खेले गए मैच में 38 छक्के लग गए। इसके बाद हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मैच में भी कुल 38 छक्के लगे। हालांकि जल्द ही ये रिकॉर्ड टूट गया और कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच में कुल 42 छक्के लगे। ये रिकॉर्ड चेज वाला मैच भी था। स्पोर्ट्स कैन के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
कुलविंदर जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईपीएल एक बहुत ही रोमांचकारी क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो रिकॉर्ड बनना तो स्वाभाविक है।
2008 में जब शुरू हुआ था तब 59 मैच हुए थे टोटल, उसमें 620 छक्के लगे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत छक्के लग रहे हैं। लेकिन अब ये प्योरली बल्लेबाजों का गेम बन गया है और बहुत बुरी तरीके से जो छक्के लग रहे हैं, 1000 कल लगा जब ट्रेविस हेड ने लगाया था। मुझे लगता है कि जो 1100 और 24 का जो पिछले 2023 के आईपीएल का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड इस बार जरूर टूटेगा। और अभी भी कुल 17 मैच बाकी हैं और ये जो कल 1000वां मैच लगा, वो रिपोर्ट में कहा गया 67वें मैच में लगा, 57वें मैच में लगा, कल 57वां मैच।
जी जी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पांचवीं और आखिरी 2020 इंटरनेशनल में बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया है। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। इससे पहले भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दयालन हेमलता ने सबसे ज्यादा 37 रन की पारी खेली। इसके अलावा स्मृति मंधाना ने 33 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 30 रन और ऋचा घोष ने नाबाद 28 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। बांग्लादेश टीम के लिए नाहिदा अख्तर और रुबिया खान ने 2-2 विकेट और सुल्ताना खातून ने 1 विकेट अपने खाते में डाला। 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप कर लिया है। भारत की राधा यादव ने 24 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। राधा यादव ने कुल 10 विकेट हासिल किए। कुलविंदर जी, लगता है भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया वो बिल्कुल सही किया और क्लीन स्वीप भी कर लिया।
देखिए रवि, सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही टीमें, जो बांग्लादेश और भारत की टीम है, उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं, आपस में कोई उनका मैच नहीं कर सकते। बहुत अंतर है प्रदर्शन में। भारतीय टीम बहुत आगे है, बांग्लादेश की टीम को इतना अनुभव नहीं है। भारतीय टीम के लिए ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश में उसने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया, 5-0 से हराया, क्योंकि थोड़े दिनों बाद यहीं इसी देश में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है महिलाओं का, तो भारतीय टीम की अच्छी प्रैक्टिस हुई और भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है वो उस विश्व कप में बहुत काम आएगा।
राधा यादव का प्रदर्शन देखिए कितना शानदार है,
बहुत अच्छा। राधा यादव हुई, आप ऋचा घोष हुई, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, सभी खिलाड़ी अच्छे हैं, अनुभवी हैं। बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं, इतना अनुभव नहीं, इतना एक्सपोजर भी उनको नहीं मिलता और न उनके बोर्ड के पास इतना पैसा है कि एक्सपोजर दिला सके। तो भारतीय टीम बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्लीन स्वीप करने के बाद विश्व कप की अच्छे तरीके से तैयारी के साथ उतरेगी।
टेबल टेनिस में सऊदी स्मैश में मनिका बत्रा का यादगार सफर। आज जेद्दाह में क्वार्टर फाइनल में दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी हिना हयाता से हार के साथ समाप्त हो गया। जापान की हयाता ने भारत की मनिका को 7-11, 11-6, 11-4, 13-11, 11-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मनिका बत्रा विश्व रैंकिंग में 39वें नंबर की खिलाड़ी हैं। बत्रा ने अपने अभियान की शुरुआत रोमानिया की एंड्रिया जेगोमैन पर 11-6, 13-11, 11-8 से जीत के साथ की। उन्होंने दूसरे दौर में दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग वन्यू को 6-11, 11-5, 11-7, 12-10 से हराया और फिर 16वें राउंड में जर्मनी की दुनिया की 14वें नंबर की खिलाड़ी नीना मिदेलहम को 3-0 से हराया। मनिका ने, कुलविंदर जी, पहले दुनिया की 14वें नंबर की खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फिर वर्ल्ड नंबर 5 हिना हयाता से हार गई।
देखिए, बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, एशियाड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनको पुरस्कार भी काफी मिले, तो मैं समझता हूं कि एक उम्मीद भारत की, जो काफी अरसे से महिला टेबल टेनिस में इतनी नहीं दिखाई दे रही थी, मनिका बत्रा के आने से, ये जो हार जरूर हुई है उनकी, लेकिन ये आगे जो जो जितने बड़े टूर्नामेंट आने उसके लिए उनके पास काफी अच्छा अनुभव है और उम्मीद करते हैं कि आगे जहां किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलेगी भारत के लिए कोई न कोई पदक जरूर जीत के।
तो इनका आप भविष्य उज्ज्वल देखते हैं?
उनका और भारतीय टेबल टेनिस का भविष्य भी उज्ज्वल है इनकी वजह से।
जी, कुश्ती में भारत ने आज दोपहर इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। पुरुषों के 67 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में भारत के आशु ने क्वालिफायर में नॉर्वे के हावर्ड जोर्जेंसन को 5-4 से हराकर राउंड 16 में प्रवेश कर लिया। इसके अतिरिक्त 5 अन्य भारतीय पहलवान भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं। 60 किलोग्राम वर्ग में सुमित, 77 किलोग्राम में विकास, 87 किलोग्राम में सुनील, 97 किलोग्राम में नितेश और 130 किलोग्राम वर्ग में नवीन प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। अमन सहरावत और दीपक पुनिया सहित 14 भारतीय पहलवान पेरिस ओलंपिक कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत ने अब तक कुश्ती में केवल 4 कोटा हासिल किए हैं और ये सभी महिला कुश्ती में आए हैं। तो कुलविंदर जी, भारत ने आज विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर ली है।
देखिए, भारतीय जो पहलवान उनको काफी कोटे मिले हैं पेरिस ओलंपिक के लिए।
जी।
बीच में भारतीय कुश्ती कुछ अनवांटेड कारणों की वजह से चर्चा में रही, लेकिन उससे अब ऊपर उठकर खिलाड़ियों ने और कुश्ती फेडरेशन ने तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि यहां भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी भारतीय कुश्ती के जितने भी खिलाड़ी हैं और पेरिस ओलंपिक से भी भारत को उम्मीद है, जो कि बिल्कुल सिर के ऊपर है, कोई न कोई पदक भारत को अवश्य।
वैसे पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है जो हमारे भारतीय पहलवान हैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं।
काफी मेहनत तो शुरुआत से कर रहे हैं। आपको देखिए, ओलंपिक मेडल भी मिल चुके हैं, स्वर्ण भी मिला है, रजत भी मिला है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने भारतीय खिलाड़ियों का पहलवानों का प्रदर्शन है, आगे भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है।
ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा कल शुक्रवार को दोहा डायमंडल लीग के पहले चरण के जरिए पेरिस ओलंपिक की अपनी तैयारी शुरू करेंगे। एक रिपोर्ट।
मौजूदा विश्व और एशियाई खेल चैंपियनशिप भारत के भालाफेंक स्टार नीरज चोपड़ा का सामना पूर्व विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और ओलंपिक तथा विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता चेक गणराज्य के याकूब वालेस से होगा। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता भारत के किशोर जेना भी डायमंड लीग में कदम रखेंगे। उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन 87.54 मीटर है, जबकि नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर है, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। यूरोपीय चैंपियन जर्मनी के वेबर भी 10 खिलाड़ियों में शामिल है जो लीग में उतरेंगे। इसके बाद लीग का दूसरा चरण 19 मई को मोरक्को में होगा। नीरज चोपड़ा यहां पिछले चैंपियन भी हैं। उन्होंने 2023 में वालेश और पीटर्स को हराया था। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो कुलविंदर जी, नीरज चोपड़ा जो है वो पेरिस ओलंपिक की तैयारी शुरू कर चुके हैं।
बिल्कुल, नीरज चोपड़ा ने देखिए टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह से एथलेटिक्स में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जिताया, वो जब 13 साल तक तो उनको उम्मीद नहीं थी कि वो इस खेल में आएंगे। अपने ओवरवेट की वजह से उस खेल में आए और ऐसा रम गए इस खेल में कि उन्होंने हर जगह पर स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता, चाहे वो विश्व चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। पहले एथलीट है जिन्होंने इंडिविजुअल प्रतियोगिताओं में पदक जीता, तो बहुत उम्मीदें हैं और अभी काफी लंबा चलेंगे भारत को इनसे पदकों की बहुत ज्यादा उम्मीदें।
और जैसा कि पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है,
वो मैं बताऊंगा, अभी भी बारिश चल रही है। बारिश की वजह से आउटफील्ड अभी गीला है, अभी शुरू नहीं हो पाएगा। और ये दोनों ही टीमें, आरसीबी और पंजाब की टीम, दोनों ही अभी तक आईपीएल को नहीं जीत सकी हैं, तो प्रयास रहेगा कि इस मुकाबले को जीते आगे बढ़े और अंतिम चार में पहुंचे, क्योंकि आरसीबी की टीम तो फिर भी 2022 में अंतिम चार में पहुंची थी प्लेऑफ में, पंजाब की टीम नहीं पहुंची थी। और उम्मीद है कि इस बार आरसीबी इस पर भारी पड़ेगी और पहुंचने का प्रयास करेगी।
आपने शुरू में भी कहा था कार्यक्रम के उनका पलड़ा भारी मुझे लग रहा है।
बिल्कुल भारी लग रहा है, क्योंकि उनके पास काफी दमदार, और यह फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे पंजाब वाले, गेंदबाजी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही। अगर गेंदबाज प्रयास करते हैं तो फील्डर कैच ड्रॉप कर देते हैं, तो कैसे कैच जिताते मैच।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। कुलविंदर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने इतनी अच्छी चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को। नमस्कार।